हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 18. राजा ने महात्मा को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन महात्मा वीरेश के गायब होने से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए उन्होंने सैनिकों को वापस भेज दिया और कहा कि वो महल नहीं आ सकते, अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और वो अपनी तरफ से राजकुमारी को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। महात्मा की ये बात सुनकर सैनिक बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोला, क्या सच में आपको इस बारे में पता है कि राजकुमारी महल से गायब है? और सिर्फ राजकुमारी नहीं, इस बार तो राजकुमार भी उनके साथ महल से बाहर जा चुके हैं और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है गुरुजी। लेकिन अगर आपको पता हो तो कृपा करके हमारे साथ चलिए, क्योंकि रानी की हालत बहुत खराब है, कोई भी वैद्य और कोई भी औषधि उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है। उन सैनिकों के साथ आए हुए सेनापति ने महात्मा के सामने हाथ जोड़कर जमीन पर घुटने केवल बैठते हुए कहा और वो उनसे प्रार्थना विनती कर रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से महात्मा उनकी बात मान जाएं और उनके साथ महल में चलने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन महात्मा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वहां से उठकर वो कहीं भी जाएंगे। महात्मा को ऐसा क्या हो तो मुझे नहीं मालूम, तो पता है गुरुजी, लेकिन तो ये नहीं पता है, सारे सैनिकों का इस तरह से वहां पर आना गुरुजी के दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन उन्होंने सीधी तरह से सैनिकों को मना कर दिया हुए कहा, चले जाओ, यहां रुककर कोई भी फायदा नहीं है, तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता है, जहां पर मेरी जरूरत होती है मैं वहां पर खुद ही आ जाता हूं, फिर मुझे इस तरह से बुलावा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इस बार भी मैं आ जाऊंगा, जाओ और जाकर राजा को ये बात बता दो। महात्मा के ऐसे तेवर देखकर और उनकी बातें सुनकर सेनानायक समझ गया कि वो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं और अपने मनमर्जी की ही करेंगे। इसलिए मायूसी से वो अपनी जगह से उठा और वहां से आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, मणिकनाथ कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी सच बताना है विक्रांत के बारे में, और अगर तुमने उसे नहीं रोका तो 12 दिन के बाद बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तेज आवाज में ये चिल्लाते हुए महात्मा के दोस्त ठाकुर नरेंद्र प्रताप वहां पर आए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त महात्मा अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ वहां पर पूरी सेना के लोग भी बैठे हुए हैं, और उन लोगों को वहां पर देखकर वो एकदम चुप हो गए। लेकिन सेनापति का दिमाग हटा गया और उसने बड़ी बड़ी उन दोनों की तरफ देखा और फिर बोला, इसका मतलब आप दोनों को पता है पहले से ही कि वो शैतान कहां पर है और उसने राजकुमारी को कहां पर रखा हुआ, लेकिन फिर भी अपने महाराज की मदद नहीं की, ऐसा क्यों किया? आप लोगों को पता नहीं है इस वक्त क्या चल रहा है महल में और पूरे राज्य में, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं महात्मा? सेनापति ये बात बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुंह से के सारे शब्द निकल गए, जिससे कि सुनकर वहां आसपास खड़े सारे शिष्यों को बहुत ही बुरा लगा और वो सब तुरंत ही हमला करने वाली स्थिति में खड़े हो गए और सक्षम नतीजे आवाज में चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ही हमारे गुरुजी को कुछ भी बोलने की, जब भी वो तुम्हारी हर संभव मदद कर रहे हैं? हाँ, तुम लोग सच में बहुत एहसान फरामोश लोग हो, वो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं और तुम हो कि उन पर ही इल्जाम लगा रहे हो। शिष्यों के बीच खड़े एक शिष्य ने ये बात भी बोली तो अपना सिर हिलाते हुए सेनापति ने उन सबकी तरफ देखा और कहा, नहीं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से अगर महात्मा हमारी कोई भी मदद कर रहे हैं तो इससे हमें उस जगह के बारे में पता चला चाहिए, है ना, जो कि आपको तो पहले से ही पता है, लेकिन कैसे कैसे पता चला आप लोगों को इस बारे में? सेनापति ने उन दोनों से के बात पूछी तो महात्मा और नरेंद्र ठाकुर दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली, क्योंकि इस बारे में बोलो कैसे ही किसी को नहीं बता सकते और अगि आश्रम के सारे लोग भी वहां पर थे। महात्मा गुरुजी ये बात समझ गए और उन्होंने सभी को वहां से जाने के लिए कहा, सभी लोग यहां से जाओ और जब तक मैं आगे ना दूं कोई भी यहां पर नहीं आएगा, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। माँ, मैं सभी की तरफ देखते हुए एकदम गंभीर मुद्रा में कहा तो सभी ने हल्का सा झुककर महात्मा को प्रणाम किया और लगभग 2-3 साल लोग जो वहां पर उन दोनों तीनों लोगों को घेर कर खड़े हुए थे वो सब वहां से चले गए। उन सब लोगों के साथ ही राजा के सारे सिपाही भी आंखों से ओझल हो गए, वो सब वहां से आगे गए और तभी सामने बैठा हुआ सेनापति इस तरह बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से पीछे मुड़कर महात्मा की तरफ देखने लगा तो महात्मा ने एकदम से ही बोला, तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और किस लिए आए हो यहाँ पर। हम बस मदद के लिए आए हैं, आपके शिवकर हैं और महाराज के भी, उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है जिससे कि आप हमारी कोई भी मदद करें और हमारा साथ दें जैसे कि आप अब तक देते आए हैं। सेनापति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा की बात का जवाब दिया तो उसकी इस बात पर महात्मा खुश हो गए, लेकिन तभी ठाकुर ने उन दोनों के बीच बोलते हुए कहा, अगर बात भी दिया फिर भी तुम लोग उसे तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। और हाँ, राजकुमारी उसके साथ सुरक्षित है अभी कुछ दिनों के लिए, वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद, इतना बोलते हुए ठाकुर नरेंद्र चुप हो गए क्योंकि पूरी बात क्या है ये तो उन्हें भी अभी नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो बहुत जल्दी इस बारे में बात कर लेंगे। चंद्रिका, चंद्रिका उठो, होश में आओ, तुम क्या हुआ है तुम्हें? लगता है इसे कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लग गई है और इसके पीछे मैं वहां पर राजकुमार को छोड़कर आ गया। क्या करूं मैं, इसे भी होश नहीं आ रहा। वीरेश ने अपनी गोद में चंद्रिका का सिर रखते हुए उसके गालों पर हल्के से थपथपा कर कहा और वो बहुत ही परेशान लग रहा है। उसके माथे पर बोल पड़े हुए हैं, आगे भी सिकुड़कर छोटी सी हो गई है और वो इस तरह परेशानी के साथ चंद्रिका की तरफ देख रहा है जो कि फिलहाल बेहोश है और उसके माथे पर बहुत ही गहरी चोट के निशान हैं और चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी भी लगी हुई है। उसके हाथ और कंधे पर भी चोट के निशान हैं जहां से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही कुछ सूखे हुए खून के निशान भी हैं। रात अब तक काफी ज्यादा हो चुकी है और चांद की रोशनी वहां पर ज्यादा दूर तक देखने के लिए काफी नहीं है। नीचे गिरते हुए चंद्रिका का सर उसे पत्थर से टकराया। जब तक वीरेश उसे तक पहुंच पाता, जब तक चंद्रिका को काफी गहरी चोट लग चुकी थी और वो बेहोश हो गई। इसके अलावा वीरेश ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसे लगा कि शायद उसकी शक्तियां काम हो गई हैं, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी जिसके बारे में वीरेश को भी कुछ नहीं पता है। इसलिए उसने चंद्रिका को अपनी बाहों में उठाया और वहां से लेकर आगे बढ़ा। वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगा और वो आज भी अब तक शांत हो चुकी है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों किस तरफ हैं और कहां जा रहे हैं। उसे रास्ते भी समझ नहीं आ रहे हैं, वो बस बिना किसी मंजिल के ऐसे ही एक तरफ बढ़ता जा रहा है। वीरेश वहां से चलता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में एक बहुत ही भयानक सी आवाज पड़ी, वहीं रुक जाओ, तुम हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हमारी अनुमति के बिना।
ये बहुत ही अलग, एकदम भयानक, लेकिन किसी औरत की आवाज थी। लेकिन उसे आवाज में चेतावनी कोई भी एकदम साफ सुन सकता था। वो गुस्से में भी लग रही थी लेकिन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वीरेश को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन तुरंत ही वो सतर्क हो गया और अपनी जगह पर ही रुकते हुए उसने चारों तरफ, चंद्रिका अभी भी उसकी गोद में बेहोश है और उसका सर एक तरफ को लुढ़क गया है। वीरेश समझ गया कि अनजाने में ही वो किसी और शक्ति के इलाके में आ गया है और वहां जंगल में कई सारे इलाके ऐसे होते हैं जहां पर ऐसे ही कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वीरेश को वैसे तो इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति और इतनी ज्यादा रात होने की वजह से शायद वो समझ नहीं पाया, इसीलिए वो तुरंत अपनी जगह पर रुक गया और चारों तरफ आसपास देखकर उसे शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। कौन हो तुम, सामने आओ, अगर ये तुम्हारा इलाका है तो तुम्हें इस तरह से छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, वीरेश ने उसे आवाज को जवाब देते हुए कहा। उसने ऐसा इसलिए भी बोला क्योंकि वीरेश को अभी तक ठीक से कुछ भी समझ नहीं आया था। वो इतना समझ चुका था कि वो डायन या पिशाचिनी में से कोई एक है, लेकिन आखिर कौन है? दोनों की ही शक्तियां अलग अलग होती हैं और वीरेश को लग रहा था कि अभी उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं हैं और ना ही पूरी तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि काफी देर से उसकी काफी सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं। जीने की दोबारा से समाहित करने के लिए उसने काफी समय से कुछ भी नहीं किया। मैं छुप नहीं रही हूं, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हारा कोई तो मकसद होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे दिव्य शक्तियों वाले लोग इस तरह से हम शैतानी शक्तियों के आसपास तो नहीं आते, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं, तो फिर बताओ। इतना बोलते हुए वीरेश को अपने सामने पूरे सफेद कपड़े पहने, हवा में तैरती हुई एक खुले बालों वाली औरत नजर आई, जिसकी आंखें पूरी तरह से एकदम लाल थीं और चेहरे पर उसके एक मुस्कुराहट दिखने में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब तक उसकी वो लाल आंखें पूरी तरह से एकदम काली नहीं हो गई, तब तक और फिर उसके पूरे हाथ हवा में फैले हुए थे और उसके बाल भी। उसे इस तरह से सामने देखकर वीरेश को ये समझते देर नहीं लगी कि वो पिशाचिनी है और पिशाचिनी बहुत ही खतरनाक होती है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कोई इस तरह से बिना उनकी मर्जी के उनके इलाके में आ जाए, और वीरेश तो अभी यह गलती कर चुका है, इसलिए वो घबराकर अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गया। देख लिया तुमने मुझे, किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं महापिशाचिनी हूं और ये पूरा इलाका हम पिशाचिनियों का है। यहां पर किसी भी इंसान का आना वर्जित है और जो भी जिंदा आता है हम में से कोई भी उसे जिंदा जाने नहीं देते। इतना बोलते हुए वो पिशाचनी जोर का ठहाका लगाकर हंसी, तो उसकी यह हंसी, तो उसकी यह भयानक हंसी वीरेश के कानों के साथ साथ वहां पूरे ही जंगल में गूंज गई और बेहोश चंद्रिका को भी इस तरह के हंसने की आवाज सुनाई दी तो धीरे से हिली और कसम साते हुए उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसने इधर उधर देखा। दो इंसान खुद ही यहां पर मरने के लिए आ गए हैं। वीरेश की गोद में हिलती डुलती हुई चंद्रिका की तरफ देखकर उसने कहा तो वीरेश एकदम से ही बोल पड़ा, नहीं, मैं यहां पर आना नहीं चाहता था। मैं गलती से भटक कर यहां पर आ गया हूं। उम्मीद है तुम इस बात को समझोगे और मुझे यहां से जाने दोगी। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता। कहानी जारी रहेगी।